ஓம் த்யாயே நித்யம் மகேசம் ரஜதகிரிநிபம் சாருசந்திராவதம்சம் ரத்நாகல்போஜ்வலாங்கம் பரசுமிருகவரா வீதிஹஸ்தம் பிரசன்னம் பத்மாசீனம் சமந்தாத் ஸ்துதமமரகணிர் வ்யாக்ரக்ருத்திம் வசானம் விஸ்வாத்யம் விஸ்வவந்த்யம் நிகிலபயஹரம் பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிநேத்ரம் நாராயணம் பத்மபவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத்புத்ர பராசரஞ்ச வ்யாஸம் சுகம் கௌடபதம் மஹந்தம் கோவிந்த யோகீந்திர மதாஸ்ய சிஷ்யம் ஸ்ரீ சங்கராச்சார்ய மதாஸ்ய பத்ம பாதஞ்ச ஹஸ்தாமலகஞ்ச சிஷ்யம் தந்தோடகம் வார்த்திகார மன்யான் அஸ்மத் குரும் சந்ததமானதோஸ்மி விசுத்த ஞான தேஹாய த்ரிவேதி திவ்ய சக்ஷுஷே ஸ்ரேய ப்ராப்தி நிமித்தாய நம சோமார்த்ததாரிணே ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் ஓம் ஓம். ஆதிகுரு பகவான் சங்கராச்சாரிய த்வாரா விரச்சித் சிவானந்த லஹரி இஸ் ஸ்தோத்திர கே ஆதார் பர் விசார் கர் ரஹே ஹே உஸ்கே லியே 14வாம் ஸ்லோக். பிரபோஸ்த்வம் தீனானாம் கலு பரம பந்து பசுபதே பிரமுக்யோஹம் தேசாம் அபி கிமுத பந்துத்தமனயோ த்வயைவாச்சந்தவ்யா சிவமதபராதாச்ச சகலா பிரயத்னாத் கர்த்தவ்யம் மதவனமியம் பந்து சரணி உபேக்ஷ்யா நோசேத் கிம் நஹரசி பவத்யான விமுகம் துராசா பூயிஷ்டாம் விதிலிபிமசத்தோ யதி பவான் சிரஸ்தத்வை தாத்ரம் நகலு சுவ்ருத்தம் பசுபதே கதம் வா நிர்யத்னம் கரநகமுகே நைவ லுலிதம் ஃபலாத் வா புண்யானாம் மயி கருணயா வா த்வயி விபோ ப்ரசன்னேபி ஸ்வாமின் பவதமல பாதாப்ஜயுகலம் கதம் பஸ்யேயம் மாம் ஸ்தகயதி நமஸ்யன் ப்ரமஜுஷம் நிலிம்பானாம் ஸ்ரேணீர் நிஜ கனக மாணி முகுட்டி விரிஞ்சிர் தீர்காயுர் பவது பவதா தத் பரசிரஸ் சதுஷ்கம் சங்ரக்ஷ்யம் சகலு புவி தன்யம் லிகிதவான் விசார கோ வாமாம் விசத கிருபயா பாதி சிவதே கடாட்ச வியாபார ஸ்வயமபி ச தீனா வனபர த்வமேகோ லோகானாம் பரம ஃபலதோ திவ்ய பதவிம் வஹந்தஸ்த்வன்மூலாம் புனரபி பஜந்தே ஹரிமுக கியத்வா தாட்சிண்யம் தவ சிவ மதாசாச்சியதி கதா வா மத்ராக்ஷ்யாம் वहसि करुणा पूरित दृशा प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परम बंधु पशुपते प्रमुखोऽहं तेषां अपि किमुत बंधुत्वमनयोः त्वयैवाक्षन्तव्या शिवमदपराधाच्च सकला प्रयत्नाद् कर्तव्यम् मदवनमियं बन्धुसरणी प्रभुस्त्वं दीनानां। हे पशुपते, पशुओं की रक्षा करने वाला होने के कारण शिवजी का नाम है पशुपति। आप लोग भगवान शिव से ये आशा नहीं करना कि वो हमारी रक्षा करेगा, वो केवल पशुओं की रक्षा करता है, मनुष्यों की रक्षा नहीं करेगा। और तुम यदि अपने को मनुष्य मानते हो तो भगवान से आशा नहीं रखना कि परमात्मा हमारी रक्षा करेगा। या तो तुम अपने को पशु सिद्ध करो तो तुम्हारी रक्षा करेगा वो, या फिर मनुष्य सिद्ध करते हो अपने को तो फिर वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि उसका नाम पशुपति है। पशु शब्द का अर्थ क्या है? पाशबद्धो ये पशव, जो पाश से बंधा हुआ जीव है उसका नाम पशु है। आप लोग ये नहीं मान लेना कि हम मनुष्य हैं, आपके ये मनुष्य हों ये मानना ही बहुत बड़ी भ्रांति है आपकी। भगवान के दृष्टि में, शिव के दृष्टि में आप मनुष्य नहीं हो, आप पशु हो। हम भी पशु हैं, इसलिए पशु पशु के साथ मेल खाता है। मृगा मृगै संगमनुब्रजन्ति गावश्च गोभी तुरगा तुरंगै ही, नीतिकार ने लिखा है। आप पशु हैं इसलिए हम भी आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि हम भी पशु है ना। आप पशु होते और हम मनुष्य होते तो आपके पास क्यों आते, मनुष्यों के पास जाते हैं? मनुष्य और पशु में अंतर क्या है महाराज? बंधे हुए जीव का नाम पशु, मनन करने वाले विचार करने वाला जीव का नाम मनुष्य है। मनुष्य की परिभाषा ही किया है, दो व्युत्पत्ति किया है मनुष्य का। एक तो मनसा सिव्यति इति मनुष्य, और दूसरा है मनोरपत्यम मानवः। मन से यानी विचारात्मिका बुद्धि से युक्त हुआ हुआ प्राणी का नाम मनुष्य है। और विचारात्मिका कार्य कारणात्मक सत्य असत्य विचारात्मिका बुद्धि से जो युक्त नहीं है वो फिर वो मनुष्य नहीं होगा, क्योंकि वह केवल इंद्रिय और विषय से संबंध रखता है, विचारों से संबंध नहीं रखता, इसलिए वह पशु है। तो अविद्या काम कर्म ही ये पास हैं, त्रिविध पास है ये, अविद्या काम और कर्म। जन्मांतरीय कर्म, सुबह सुबह कर्म के फलों से, माने कर्मों से, प्रारब्ध कर्मों से बंधा हुआ होने के कारण स्थूल शरीर ये पाशबद्ध है। हमारा स्थूल शरीर किस पाशों से बंधा है? एक व्यक्ति कहता था, महाराज आप जैसे फक्कड़ साधु तो है ही नहीं, हमारे तो बहुत बंधन है, आपके पीछे पीछे हम नहीं चल सकते, क्योंकि हम तो बंधे हुए हैं, हम गृहस्थ हैं, हमारे तो बहुत बंधन है, आपके पीछे पीछे हम नहीं चल सकते। क्या है बंधन? सबसे पहले तो बंधन हमने कहा तुम्हारा बंधन कहां है, पांव में भी बंधन नहीं है, हाथ में भी बंधन नहीं है। बंधन हमेशा दुष्ट होता है, दो जगह एक साथ बंधा हुआ हो उसको बंधन कहते हैं। खाली एक जगह बंधा हो तो उसको बंधन नहीं कहते हो। जैसे आप लोग कहते तो है, कहते क्या हो, रक्षाबंधन कहते हो कि नहीं, आने वाला है ना श्रावण में आता है रक्षाबंधन, क्या बांधते हो वहां, धागा बांधते हो, उसको बंधन पता नहीं क्यों कह दिया। बंधन तो ये होता है कि दुष्ट होता है, दो जगह बंधनी चाहिए, समझे कि नहीं। तुम्हारे हाथ में उस डोरी का, उस धागे का एक छोर तुम्हारे हाथ में बंधा हो, दूसरा छोर किसी खूंटे के साथ बंधा हो, तब क्या कहेंगे, बंधन है, कहेंगे कि नहीं। कुत्ता बंधा हुआ है कि नहीं पूछते हैं, बाहर साइन बोर्ड लिखा रहता है इस घर में कुत्ता रहता है, क्या लिखा रहता है, है? कुत्ते से सावधान क्योंकि इस घर में कुत्ता है। मालिक खुद अपने आप को कुत्ता सिद्ध कर रहा है क्योंकि इस घर में कुत्ता है, साइन बोर्ड ही रखा है कुत्ता है, है? बोलो पता नहीं क्या है। तो बोले कोई परिचय आ गया तो आपका कुत्ता बंधा है कि नहीं, हालांकि उसके गले में एक पट्टा बंधा हुआ है, लेकिन गले में एक पट्टा बंधा हुआ है, उस गले में बंधे हुए पट्टे से क्या वो बंधा हुआ सिद्ध होगा। गले में भी बंधा हो और किसी लकड़ी के किसी खूंटे के साथ भी बंधा हो तब ना उसको बंधा हुआ कहेंगे, पशु बंधा है मतलब क्या हुआ, उस पशु के एक रस्सी का एक छोर उसके गले में बंधा हो, पांव में बंधा हो, कमर में बंधा हो, हाथ में बंधा हो, और दूसरा छोर किसी खूंटे के साथ बंधा हो। बंधन हमेशा द्वेष्ट होता है, दो जगह रहता है तभी उसको बंधन कहेंगे, एक जगह रहे तो उसका क्या बंधन कहेंगे। ऐसा कोई बंधन है कि जो दो जगह रह रहा है, आपको भी बांध रहा है, आपकी तरफ भी है और उधर दूसरे छोर में भी वह किसी न किसी को पकड़ रखा है, एक छोर से आपको पकड़ रखा है, आपको निकलने नहीं दे रहा है, और दूसरी छोर से किसी और को पकड़ रखा है, तो फिर उसको क्या हुआ, बंधन। मन आपका एक तो आपके साथ जुड़ा है और दूसरा घर के साथ जुड़ा होगा तो क्या होगा, बंधन। केवल आपके साथ जुड़ा हो, घर के साथ नहीं जुड़ा हो तो उसको बंधन नहीं कहेंगे, वो कहेंगे क्योंकि घर के साथ जुड़ा ही नहीं है वो, इसलिए आप स्वतंत्र हैं, मन लेके चले जाओ जहां भी जाओ, ये तो उसको बंधन नहीं कहेंगे। तो सबसे पहला बंधन आपके स्थूल शरीर के साथ है, किसका बंधन है, प्रारब्ध जन्मांतरीय किए हुए शुभाशुभ कर्म का फल, प्रारब्ध से आपका स्थूल शरीर बंधा हुआ है, उस प्रारब्ध से आपका स्थूल मुक्त हो ही नहीं सकता है, और यदि उस प्रारब्ध बंधन से मुक्त हो गया तो आपका शरीर रह ही नहीं सकता है, और आपका शरीर रहेगा तो उस प्रारब्ध के बंधनों से मुक्त नहीं होगा, तो यही आपकी पशुता है, उसी बंधन से, प्रारब्ध बंधन से बंधा हुआ स्थूल शरीर के प्रति आपकी जो आसक्ति है, ममत्व है, वही आपका एक प्रकार का बंधन है, और दूसरा बंधन क्या है, आपके सूक्ष्म शरीर के साथ बंधा हुआ होना। सूक्ष्म शरीर के साथ बंधा हुआ है कामना वासना, वो कामना और वासना ही सूक्ष्म शरीर का बंधन है। एक तो आपके मन में, आपके हृदय में उसका स्थान है, दूसरा वह परोक्ष जो विषय है उन पर वो जुड़ा हुआ है। जिस समय आपकी वासना मन और परोक्ष विषय के साथ जुड़ा हुआ रहता है तब वह कामना और वासना के रूप में आपको बांधे रखता है और मरने के बाद लोक लोकांतर में लेके जाता है। कौन? वही वासना या कर्म या वासना। और तीसरा है आपके बंधन कारण शरीर में है, आवरणात्मिका जो वृत्ति, विक्षेपात्मिका वृत्ति जो कारण शरीर में सन्निहित है, वही आपके अपने स्वरूप को न जानना पना, ये आपके बंधन है। और जीवात्मा जब तक इन पांच माने चार तीन बंधनों से बंधा हुआ रहता है तब तक जीवात्मा की संज्ञा पशु ही होती है। जब ये तीनों बंधन उससे मुक्त हो जावे जीवात्मा तब फिर वह पशु भाव उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए हे पशुपते संबोधन है, प्रभुस्तुम, मैं बंधन में बंधा हुआ हूं और आप स्वतंत्र हैं। आपके न पूर्व जन्म के सुबह सुबह प्रारब्ध हैं, आपके न कोई वासनाएं हैं, आपके न कोई अविद्या वृत्ति है। इसलिए हम जिन जिन पासों से बंधे हुए हैं उन पासों का आपके साथ कोई संबंध न होने के कारण आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र को ही प्रभु कहा है, प्रभु माने सामर्थ्यशाली। आप सामर्थ्यशाली हैं, मैं असमर्थ हूं, बंधा हूं मैं। प्रभुस्तम दीनानाम, दीनानाम खलु परम बंधु, हमारे जैसे दीन और दुखियों के आप परम मित्र है, परम बंधु है। जो हृदय से जुड़ा हुआ हो ना, बंधा हुआ हो ना, उसको बंधु कहते हैं। हाँ, एक हृदय दूसरे हृदय से जुड़ा हुआ हो तो दोनों को क्या कहेंगे? बंधु। बंधा हुआ है वो किससे? हृदय से बंधा हुआ है, भावना से बंधा हुआ है। उसने उसको बांधा है, उसने उसको बांधा है, तो दोनों क्या हो गए? वह उसका बंधु हो गया, वो उसका बंधु हो गया। इसी तरह परमात्मा और जीवात्मा के बीच में क्या संबंध है? बंधुत्व संबंध है। परमात्मा जीवात्मा से जुड़ा हुआ है और जीवात्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं बहुत दीन हूं, दुखी हूं, असहाय हूं, निरीह हूं, और आप सारे दीन दुखी निरीहों का आप परम मित्र है। बंधु को दूसरे शब्दों में प्रयोग करते हैं मित्र। मित्र शब्द का अर्थ होता है मिलकर रक्षा करे, उसका नाम मित्र। हाँ, मिलकर मेरे से मिलकर आप अपनी रक्षा करो तो आपके दृष्टि में मैं क्या हो गया? मैं मित्र हो गया। आपसे मिलकर मैं यदि अपनी रक्षा कर सकूं तो मेरे दृष्टि में आप मित्र हो गए। मैं अकेले अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा था लेकिन आपसे मिलने के बाद मैं अपनी रक्षा करने में समर्थ हो गया, इसलिए मेरा नाम आपका नाम हो गया मित्र। आप अकेले अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे थे, आप मेरे से मिलने के बाद आप अपनी रक्षा करने में समर्थ हो गए, तो आपके दृष्टि में मैं क्या हो गया? मित्र हो गया। हाँ, मिलने के बाद त्राण रक्षा मित्र, मिलनात्रायते इति मित्र। तो आप परम मित्र है। ये नहीं है कि फिर आप मेरे परम मित्र है लेकिन आपका मैं मित्र नहीं हूं। मित्र नहीं हूं तो शत्रु भी नहीं हूं। मेरे आप मित्र हैं, आपके मैं मित्र नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे आपसे मिलने पर मेरी रक्षा होगी और मेरे से मिलने पर आपकी रक्षा होगी, ये बात नहीं। क्योंकि आप तो प्रभु हैं, आप अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं समर्थ हैं लेकिन मैं अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं असमर्थ हूं। मेरी असमर्थता का कारण क्या है? तो ये बंधन है, मैं बंधा हुआ हूं। इसलिए मेरे आप परम मित्र हैं। ప్రభుస్తుం దీనానాం ఖలు పరమ బంధు పశుపతే ప్రముఖ్యోహం తేసాం అపి కిముత బంధుత్వం అనయో. ఔర్ జితనే భీ దునియా మే దీన్ హై దుఖీ హై ఉన్ సబ్ దీన్ దుఖియో మే మే నంబర్ ఏక్ కా దీన్ దుఖీ హూ ప్రముఖ్యోహం. శంకరాచార్య జీ కహ రహే సారే దిన్ దునియా మే జితనే భీ దీన్ దుఖీ హై ఉన్ సబో మే మే ప్రముఖ్ హూ ప్రథమ హూ బహుత్ జ్యాదా దీన్ హూ దుఃఖ్ బహుత్ జ్యాదా దుఖీ హూ. క్యోంకి కుచ్ లోగ్ అప్నే జో దుఃఖ హై ఉస్కో దుఖీ నీ మాన్తే వో దుఃఖ్ మే భీ సుఖ బుద్ధి కర్కే మస్తీ మే రహ రహే హై తో ఇసిలియే ఉన్కా నంబర్ ఏక్ నంబర్ నీ ఆయేగా. దుఃఖ మే భీ వో మస్తీ సే రహ రహే హై. జైసే మిర్చీ కో మిర్చీ వాలా పకోడే ఖాయేంగే ఔర్ ముఖ్ జలేగా और ललाट से पसीना सिर से पसीना बहेगा फिर भी कहेगा आ मजा आ गया. दुख में भी उनको मजा आ रहा है, है? वो काहे के प्रथम नंबर में आएंगे वे लोग. विषय आनंद को ही वो आनंद का प्रतीक मान रहे हैं जबकि विषय दुख ही है फिर भी उसको आनंद का प्रतीक मानकर उससे मुक्त होने का या छुटकारा पाने के लिए तड़प नहीं रहे हैं. और मैं सामने जन्म देने वाली मां है फिर भी मैं दुखी हूं. जन्म देने वाला बाप खड़ा है फिर भी मैं दुखी हूं. भाई बंधु सखा मित्र मन सब खड़े हैं फिर भी मैं दुखी हूं. संपत्ति वैभव सब खड़ा है, शरीर है, देह गेह सब है, फिर भी मैं दुखी हूं. इसके मतलब क्या है? किसी को अच्छा घर मिल गया तो वह दुखी नहीं, अब तो अच्छा है महाराज, बहुत अब आनंद आ गया. लियो जी, किसी को थोड़ा संपत्ति मिल गया महाराज अब ठीक है, पहले बड़ा दुख था अब वो दुख नहीं रहा. तो कहां उसका नंबर तो घट जाएगा वो, दुखियों में वो टॉप नहीं होगा वो. सब कुछ होते हुए भी जो संतुष्टि न हो, पीड़ा हो, व्यथा हो, तड़फन हो, तो उसी को कहते हैं शंकराचार्य जी, मैं सारे दुनिया में जितने दुखी हैं उनमें से मैं प्रमुख हूं, पहले नंबर का हूं. आहा, शंकराचार्य जी का लिखा हुआ है एक स्तोत्रम, शिव अपराध क्षमापन स्तोत्रम, लगभग उसी से समाधान मिलता जुलता है. शंकराचार्य जी ने शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र लिखी है. भगवान शिव के सामने बार बार क्षमा मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं. शंकराचार्य जी, भगवान शिव ने पूछा शंकराचार्य जी से, तू बार बार क्षमा करो बोल रहे है, बोल रहे हो, तुमने ऐसे कौन से अपराध कर दी जिसको मुझे क्षमा करने के लिए कह रहे हो? हैं? कौन से अपराध कर ले? शंकराचार्य जी कहते हैं, क्या अपराध नहीं किया महाराज? आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुक्षो स्थितम माम बिन्मुत्रा मेद्य मध्य कथयति नितराम जाठरो जातवेद यद्यत वै तत्र दुःखं व्यथयति नितराम शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो. आदौ पहले जन्म में मैंने इतना बड़ा अपराध कर लिया था, इतनी बड़ी गलती की थी. आदौ कर्म प्रसंगात, पूर्व जन्म के मैंने कर्म करते समय में विचार किए बिना मोह राग में आकर मैं कर्म कर गया. राग के बस में आकर, मोह के बस में आकर, लोभ के बस में आकर, मात्सर्य के बस में आकर मैं कर्म कर गया. उस कर्म का परिणाम यह हुआ कि मातृकुक्ष स्थितम मां, 10 महीने तक मां के गर्भ में मुझे जाना पड़ा. और मैंने आपको स्मरण नहीं किया, सब कुछ किया, आपका स्मरण नहीं किया। देख लो, आपका ही दिया हुआ सारे पदार्थों का मैं उपभोग करता रहा। क्या करता रहा पहले जन्म में? आपके दिए हुए सारे पदार्थों का मैं क्या करता रहा? उपभोग करता रहा। इसके बावजूद भी आपका स्मरण नहीं किया। कम गलती है ये? कम अपराध है ये? उसका परिणाम क्या हुआ? उस अपराध का उसका परिणाम क्या हुआ? मातृ कुक्षौ स्थितम, 10 महीने तक के लिए मुझे गर्भवास में जाना पड़ा। तो वहां जाने के बाद तुझे क्या समस्या हुई भाई? वहां तो बड़ा आनंद आया होगा। शंकराचार्य जी कहते महाराज, बिन मूत्रा मध्य मध्य कुतयति नितराम, जाठरो जात वेद। 10 महीने तक कहां तो मेरा इतना नाजुक कोमल शरीर और कहां मां के पेट में जलता हुआ जाठराग्नि। बोलो कहां सोना पड़ा 10 महीने तक? एयर कंडीशन के रूम में है? कहां? मां के गर्भ में। और वहां क्या है? जहां मैं सो रहा हूं था वहीं पर वैश्वानर अग्नि जाठरा अग्नि उद्दीप्त हो रही थी। कितना गर्मी हुआ होगा भाई, वो दुख वो पीड़ा मैंने अनुभव किया है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं मैंने अनुभव किया। और साथ ही कैसा था? एक तो गर्मी है? पहले हम भी बंबई में रहे बहुत। बंबई में हम 80 से रहते हैं, 80 सन 80 से रहते थे है? सन 80 से बंबई के निवासी रहे। जब हम नेपाल गए तो सब लोग हमारा नाम का क्या रखते पता है? बंबई वाले बाबा। वो लोग यही कहते थे, कौन स्वामी जी? बोले बंबई वाले स्वामी जी। ये हमारा नाम ही रखा था वहां, बंबई वाले स्वामी जी, क्योंकि यहां से गए थे। तो हम भी लोकल ट्रेन में बहुत यात्रा किया है हमने भी। आप लोगों ने जितनी यात्रा नहीं की होगी उससे ज्यादा हमने की है। लोकल ट्रेन में खूब सफर किए। तो कांदीवली से चर्च गेट प्रेम कुटीर में कथा करने आते थे। 2 महीने तक हमको प्रेम कुटीर में सुबह कथा होती है, समझे कि नहीं? और कांदीवली में काशिकांत जी के यहां शाम को कथा होती थी। वहां कथाकार नहीं मिला तो फिर क्या हुआ? तो हम रोज चर्च गेट से वहां जाए, शाम को वहां कथा करे, फिर यहां आए, फिर रात को यहां सोए खाए, सुबह यहां कथा की, खाना खाए, फिर चर्च गेट उसे वहां गए कथा करे, फिर आ गए। लोकल ट्रेन में बहुत यात्रा की थी। लेकिन सबसे ज्यादा कठिन कब होता था पता है? गाड़ी जब बांद्रा से दादर की तरफ बढ़े और कहीं लाइन क्लियर ना हो और बांद्रा के खाड़ी के बीच में खड़ी हो जाए, हैं? क्या होता है? आज भी अनुभव करते हो कि नहीं तुम लोग? वहां खड़ी हो जाए, हे भगवान, रुमाल से नाक बंद किया हुआ है, श्वास लेना मुश्किल हो जाती थी। बांद्रे के खाड़ी प्रसिद्ध है वो, क्या दुर्गंध, क्या दुर्गंध। मुश्किल से 5-7 मिनट लाइन क्लियर नहीं हुआ तो खड़े हो गई ट्रेन इधर से जाते समय, है? बांद्रा में क्लियर नहीं हुआ स्टेशन तो वहां खड़ी हो जाए, आते समय माइम में क्लियर नहीं हुआ तो वहां खड़ी हो जाए, है? तो हो, कब चले, कब चले, कब चले गाड़ी, इतना मुश्किल होता था। ये तो 2-4 मिनट की अनुभूति है और वहां 10 महीने की अनुभूति है। कहां? बांद्रे के खाड़ी से कम था वहां, है? बांद्रे के खाड़ी से कम था? बोलो, बिन्मुत्रा मध्य मध्ये कथयति नितराम जाठरो जात वेद। अरे थोड़ी सी जो अंदर हवा है मलमूत्र के गैस से तैयार हुआ वो थोड़ा सा बाहर निकल जाए तो नाक बंद करने के लिए परेशानी होती है, उसके बगल में बैठना मुश्किल होता है, होता है कि नहीं? थोड़ी सी हवा बाहर निकली, अपान वायु, उसके बगल में बैठना मुश्किल होता है 10 मिनट के 2 मिनट के लिए भी। अब वहां 10 महीना बैठना पड़ा कि नहीं बोलो उसी गैस, देख लो कम कष्ट का अनुभव हुआ। सारा कारण क्या है? आदो कर्म प्रसंग। पहली बार जन्म, पहले इससे पहले जन्म में आपके बनाए हुए, आपके दिए हुए सारे साधनों का मैं उपभोग करता रहा, लेकिन आपके प्रणाम नहीं किया, आपका स्मरण नहीं किया, उस अपराध का फल यह हुआ कि 10 महीने तक मां के गर्भ में बंद होना पड़ा और कोई आनंद नहीं आया, कष्ट ही कष्ट, वो वेदना, वो पीड़ा, वो छटपटाहट। यद्यत वही तत्र दुखम, उस समय में जो दुख हुआ शक्यते के न वक्तुम, उस दुख को मैं कैसे वर्णन करूं? अनुभव तो हो रहा है लेकिन मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, अनुभव किया मैंने। अतः हे महाराज, हे परमात्मा, अभी भी फिर जन्म लेकर आ गया और वही काम अभी भी कर रहा हूं, आपके द्वारा दिए हुए तमाम पदार्थों का मैं उपभोग कर रहा हूं, लेकिन इस बार बड़े सावधानी पूर्वक कि पहले ही आपको नमस्कार कर देता हूं भाई, हाँ एडवांस में, कहीं ऐसा न हो कि बाद में भूल जाऊं और फिर उस वेदना में फंस जाऊं। इसलिए अभी स्मृति आ गई, अभी ख्याल आ गया, जिस समय ख्याल आ गया, जिस समय स्मरण हो गया, याद आ गया, उसी समय में काम करनी चाहिए। इसलिए मैं आज ही आपको नमस्कार करता हूं, आज से ही आप सारे अपराध को क्षमा कर देना, मैं दोबारे मां के गर्भ में जाना नहीं चाहता, बस। और आप क्षमा करोगे, अपराध तो मेरे से हुआ है, क्षण क्षण में, पल पल में अपराध हुआ है, लेकिन आप क्षमा करोगे तभी मैं इन अपराधों से मुक्त हो पाऊंगा। यदि आप क्षमा नहीं करोगे तो मुझे फिर वहीं जाना पड़ेगा, मैं अब दोबारे जाना नहीं चाहता हूं। क्षंतव्यो मे पराद शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। बोले अब तो ठीक हो गया, मां के पेट में रहते तो बहुत कष्ट हुआ था, अब पैदा हो गया तब तो आनंद हुआ होगा ना। बोले क्या आनंद होना महाराज, और मुसीबत बढ़ता गया। बाल्य दुखातिरेको मल लुलित वपुष स्तन्य पाने पिपासा बिन मूत्र मध्य मध्य कथयति नितराम, बिन मूत्र मूत्र मध्ये कथयति नितराम। देख लो बाल्य दुखातिरेको, जब मैं मां के गर्भ से बाहर आया और दुख बढ़ गया, क्या बढ़ा बेटा? मल लुलित बपू, अपने ही मलमूत्र से अपना ही शरीर लथपथ हो गया। मां को अपना घर का भी काम करना था, दूध पिला दी और दूध पिलाने के बाद वो अपने काम में लग गई, और ओठ में थोड़ा रहा हुआ दूध का अंश खाने के लिए चारों तरफ से मक्खी आ गई। और क्या करती है वो मक्खी? काटने लगती है, बैठ रही है, और कहीं उनको ये भ्रांति होती है कि यहां ओठ में जो दूध लगा है उसको चाटते चाटते नाक के अंदर घुस जाती है। और मेरे हाथ में वो क्षमता नहीं थी कि मुख में बैठे हुए मक्खियों को मैं उड़ाऊं, क्यों? अभी तो पैदा हुआ था, हाथ ही नहीं चल रहे थे, पीड़ा हो रही है मक्खी के, जानता हूं ये मक्खी मुझे पीड़ा दे रही है। वो तो दूध पिला दी, चली गई। थोड़ा सा यदि दूध के भी डकार आ गया और मुख से बाहर निकल गया, मक्खियों के लिए तो पार्टी हो गया, हो गया कि नहीं? है हमारे साधु के भाषा में पता है क्या बोलते हैं? भंडारा हो गया। किसके लिए? मक्के के लिए, एक क्या हजार आ जाएंगे आप तो वाह। कुंभ मेले में कभी गए हो तुम लोग, देखे हो? अभी आने वाला ना गया हो तो अभी जनवरी से 14 जनवरी को पहला स्नान, मकर संक्रांति का पहला इलाहाबाद में पहला स्नान, और 10 फरवरी का दूसरा स्नान मौनी अमावस्या का, और 15 फरवरी का तीसरा मुख्य स्नान। ये तीन प्रधान स्नान है वह बसंत पंचमी का। पहला स्नान मकर संक्रांति का 14 जनवरी, दूसरा स्नान 10 फरवरी मौनी अमावस्या का, और तीसरा अंतिम स्नान है 15 फरवरी बसंत पंचमी का। आना, यदि नहीं आए हो, कभी नहीं गए हो तो जरूर आ जाओ, तब देखना साधुओं का भंडारा क्या होता है। क्या साधु, अहो 10,000 साधु एक साथ पंक्ति में बैठे हैं, लाइन से बैठे हैं, बांट रहे हैं भोजन मिठाई सब, और खा रहे हैं लड्डू राम पूरी राम पूरी राम, खीर राम घीर राम सब्जी राम सब्जी राम, क्या खा रहे हैं? देख रहे हो क्या हुआ उन मक्खियों का? भंडारा शुरू हुआ। कहां? बेचारा बच्चा, मां दूध पिला के चली गई, अपच हुआ, गैस बन गया, उल्टी हो गई, बस मक्खियों के लिए भंडारा शुरू हो गया। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, सारे घर के मक्खी आ गए और भीन बनाने लगे, लेकिन न तो स्वयं खड़े होकर मुख धोने की क्षमता थी, न खुद मक्खियों को हटाने की क्षमता थी, लाचार था। इंद्रियों के गोलक विकसित नहीं थे, लाचार था मैं, कह नहीं पाता था, रोने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। और मेरी रोए हुए की अवस्था को मां सुनती तो दौड़कर आती, तो धो धा के फिर चली जाती, और नहीं सुना अपने काम में मस्ती तो मक्खियों के लिए फूल भंडारा। मां ने सुन लिया तो हाफ भंडारा, भंडारा ब्रेक हो गया ना, मां सुनेगी जल्दी आएगी धो धा के साफ कर देगी, मक्खियों का फूल भंडारा नहीं हो पाएगा। देख लो, बाल्ये दुखातिरेको मल लुलित वपु स्तन्यपाने पिपासा, बिन मूत्रा मध्य मध्य, और अपने ही मलमूत्र में लथपथ हो रहा है। मां को ख्याल आ गया तो उसने कपड़े बदल दी, धो धा के सफाई कर दी, ख्याल नहीं आया तो अपने पेशाब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, शरीर में लग रहा है, दुर्गंधी आ रही है, लेकिन करें क्या, लाचार, हाथ पांव विकसित नहीं है। वो कष्ट तो और मां के गर्भ से भी ज्यादा कष्टदायी हो गया है। यौवनस्तो विषय विष धरे पंचवीर मर्म संधौ, जब तुम युवान हुए होगे, जवान हुए होंगे, तब तो फिर कोई कष्ट नहीं रहा होगा ना, क्योंकि उस समय हाथ भी बलवान हो गया, पांव बलवान, सारे काम तुम अपने कर सकते थे, पराधीनता की जीवन नहीं थी, तब तो आनंद रहा होगा। शंकराचार्य जी ने, महाराज ज्यों ज्यों उम्र बढ़ता गया त्यों त्यों और समस्या आ गई। यौवन हुआ तो कौन सी समस्या आ गई भाई? यौवनस्तो विषय विष पूरे पंचवीर मर्म संधौ, ये शिकार खेलने वाले क्या करते हैं पता है? लोहे का तीर बनाते हैं और विष में उसको बुझाते हैं, फिर पशु को मारते हैं, और मारते ही वो तीर उसमें लगते ही उसको वो पशु मर जाता है। विषय रूपी विष से भरा हुआ पांच पांच बाण कामदेव एक साथ मारता था, और लगता कहां था बोलो? वो पांच पांच तीर एक साथ लगता था, कहां लगता था? पंचभीर मर्म संधौ, शरीर में नहीं, पांव में नहीं, सिर में नहीं, छाती में नहीं, हाथ में नहीं, कहां लगता था? हृदय में, कलेजे में, हृदय में वो पांच पांच बाण एक के बाद एक, शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। अब ऐसे चुभता था कि उसी से पागल हो जाता था मैं, आपको कहां से स्मरण करें उस समय। महाराज बहुत कष्ट है जीवन, अब तो ठीक होगा, बूढ़ा हो गया ना, अब तो वो समस्या नहीं है ना। शंकराचार्य, शिव जी ने पूछा होगा ना शंकराचार्य से, अब तो तू बूढ़ा हो गया, यमराज भी 5 बाण नहीं चलाएगा, उन्हें बाण रख दी होगी एक जगह, अब काम नहीं, रिटायर हो गया होगा। अरे महाराज, 5 बाणों का आघात तो अब नहीं है, लेकिन और मुसीबत है। वार्धक्ये चंद्रयाणाम विगत गतिमति, लेव जी और मुसीबत हो गया, बूढ़ा होगा तो इससे बचूंगा सोचा था, बूढ़ा हो गया उससे तो बच गया, और मुसीबत। वार्धक्ये चंद्रयाणाम विगत गतिमति, जब बूढ़ा हुआ तो ना हाथ चलता है ना पांव चलता है, विगत गति मति, और इतने नहीं हाथ पांव चलता है ये नहीं, बुद्धि भी नहीं चलती है, विगत गति और विगत मति दोनों ही अवस्था। अब लाचार हैं, क्या करें बोलो, जवानी थी तो 5 बाण लगता रहा। हे भगवान, इस प्रकार के जीवन अब मुझे नहीं चाहिए। तब क्या करोगे भाई? बोले छंदव्यो में पराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। हे शिवा, हे महादेव, हे शंभो, यदि कोई गलती या कोई भी पुनर्जन्म के कारण रहे होंगे तो आप उन सब के क्षमा कर देना, अब हमसे वह सहा नहीं जाएगा। देखो क्या सुंदर भाव है, वही कहते हैं प्रभु त्वम। और ऐसा नहीं कि आप क्षमा करने में असमर्थ हो, आप समर्थ हैं, प्रभु हो, प्रभु स्तम दीनानाम। देखो जो काम हम कर सकते हैं, जो काम हम कर सकते हैं उसी काम को कराने के लिए और से मदद लेने की क्या जरूरत है भाई? है किसी के सहयोग लेने की जरूरत है? जो काम हम कर सकते हैं। लोग कहते हैं भगवान की इतनी पूजा की, इतनी आराधना की, इतनी सेवा की भगवान की, वो हमारी कोई पूजा आराधना प्रार्थना सुनता नहीं है, जहां के वहीं है। हमने पूछा क्यों आराधना की, क्यों पूजा की, क्यों जप किया, क्यों तप किया, तुम्हारी क्या सुनने चाहिए था भगवान के है? और क्या नहीं सुना? बोले महाराज इतने वर्षों से एक अच्छा मकान मिल जाए करके हमने पूजा किया है, बंबई में एक अच्छा मकान मिल जाए उसके लिए इतने जप किया, इतना तप किया, इतने पूजा की, इतना जप किया, फिर भी भगवान नहीं सुनता। अरे भाई तुम एक मकान के लिए तो तुम खुद ही समर्थ हो, कर लो। संसार के भौतिक पदार्थों के लिए भी भगवान का आश्रय लेना कहां का उचित है भाई? भगवान मित्र का काम नहीं है, मित्र का काम यह नहीं है कि तुम कुछ करो उसके लिए और उस कर्म से वो फंस जाए। मित्र का काम है, बोलो तुमने कोई गलती की और वो गलती पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर देना कि मैं साक्षी हूं इसने चोरी किया है, ये मित्र का काम है कि शत्रु का काम है? बोलो है? तुम्हें फिर जेल में फंसाना, रिपोर्ट कर देना, ये मित्र का काम है वो तो शत्रु का काम है? मित्र का काम क्या है? यदि तुम फंसने की अवस्था में हो तो भी वो सारे अपराध को क्षमा कर देना और तुम्हें फंसने से बचाना, रोकना, ये न मित्र का काम है? और ये जानते हैं, इसलिए एक महात्मा थे ना हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज ने एक दृष्टांत दिया। कहते हैं गुरु चेला थे, कहीं तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, गए और दिन में जब भोजन का समय हुआ तो किसी बड़े घर देख लिया किसी का, गुरु ने कहा कि बेटा ये घर काफी तगड़ा है, बहुत संपन्न है, समृद्ध है, चलो आज की भिक्षा इसी यही घर में जाकर यही मांग लेते हैं। तो दोनों गुरु चले खड़े हो गए। तब वहां जो चौकीदार था उसने कहा कि ऐ साधु भाग जाओ। महाराज जी ने दृष्टांत दिया शिव और नारद जी के माध्यम से। एक बार भगवान शिव और नारद जी साधु का भेष बनाए और चल पड़े। हाँ, और कहा किसी के यहां गए, ये घर बहुत बढ़िया है, यहां भिक्षा खूब मिलेगा। तो वहां गए तो वहां हटा दिया सबने, उधर जाओ भाग जाओ। महात्मा ने कहा हमको कुछ लेना देना, खाली भिक्षा लेने का है, भूख लगी है, भिक्षा ले ली है। बोले यहां किसी को भिक्षा भिक्षा नहीं मिलता है। महात्मा ने कहा अरे जाकर कह दो कि दो साधु बाहर खड़े हैं भिक्षा मांग रहे हैं, उनको भिक्षा दे दो, हमको कोई उसकी सारी संपत्ति वैभव कुछ मांगने थोड़ी आए हैं, उसके कमाई उसके इसमें से कोई हिस्सा लेने थोड़ी आए हैं, हम कोई इनकम टैक्स का ऑफिसर नहीं है, हम साधु हैं, बस थोड़ा सा भूख लगी है। क्षुद्र व्याधिश्च चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षो सदाम गृहताम भुज्यताम। शंकराचार्य जी अपने शिष्यों को अनेक शिष्य बनाने के बाद उनको सामने रखा और कहा कि हे शिष्यों, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है संसार में, क्योंकि तुम सन्यासी हो गए, परिव्राजक हो गए, अब तुम्हारे लिए और कोई कर्तव्य नहीं है। अब यदि कदाचित शरीर है तो शरीर के रहने से भूख प्यास तो लगेगा ही, और उस भूख प्यास के निदान करना है, उसके समाधान करनी हो तो क्षुद व्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। भिक्षा मांग लेना भाई, और जाके नारायण हरि करना, भिक्षा मांग लेना, भिक्षा खा लो, उसी से भूख की निवृत्ति हो जाएगी है? लेकिन ख्याल रखना स्वादु अन्नम न तु याच्यताम विधिवशात प्राप्ते न संतुष्यताम। तुम्हारे जिह्वा को जो स्वाद लगे अच्छा लगे, ऐसे अन्न की याचना नहीं करना। विधिवशात प्रारब्ध से तुमको जो मिले उसी से संतोष कर लेना, क्योंकि प्रारब्ध से जो मिलेगा उससे तुम्हारी भूख प्यास रूपी रोग का निदान हो जाएगा। बस विधिवशात प्राप्ते न संतुष्यता, इतने करना, इससे ज्यादा नहीं। स्वादु अन्न उन्नति जाते तब हमको हैरान करते हैं भक्त लोग, हमारे हैरान करते हैं। भोजन के लिए कहते हैं महाराज हमारे घर भोजन के लिए आइए। मैंने कहा ठीक है, हमको खाना है, तुमको खिलाना है, तुम्हारा हमारी मित्रता है, हमको खाना है तुमको खिलाना है, हो गया काम, आ जाएंगे। कब आए कैलेंडर में टिक लगाओ। टिक लगाते फिर उसके बाद कहते हैं आप क्या खाओगे लेओ जी। अरे भाई खाना खाएंगे। बोले खाना तो खाओगे, क्या खाओगे, क्या अच्छा लगता है आपको लेओ जी, कौन सी सब्जी बनाए, भोजन में क्या क्या बनाए। हम कहते हैं कि तुमको जो इच्छा हो बनाओ, हम यही कहते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मुझे ये बनाओ, तुमको जो इच्छा हो बना लो बस। हां ना खाने वाली चीज हम बताते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तेल मिर्ची नहीं खाते हैं, बाकी तुमको जो इच्छा हो बना लो। लेकिन शंकराचार्य जी तो ये भी नहीं कहते हो स्वादु अन्नम न तो या चेता। दुनिया को लहसुन प्याज के बिना भोजन अच्छा ही नहीं लगता, देख लो। और हमने कभी भी लहसुन प्याज नहीं खाए, हमको तो भोजन अच्छा लगता है भाई। और यदि हम भोजन बनाने लग जाएं तुम्हारे घर में, तुम लोगों को रिजेक्ट कर देंगे बिना लहसुन प्याज का। इतना अच्छा भोजन बनाना आता है हमको, तुम लोग आश्चर्य मनाओगे। हम जब अमेरिका जाते हैं ना, वहां हमको भोजन बनाना पड़ता है, क्योंकि बेचारे वहां तो सब काम करने वाले हैं, सुबह 6 बजे उठ के भाग गए। अब या तो उनका बनाया हुआ 7 दिन के बाद से खा के बैठो, क्योंकि सैटरडे संडे पकाते हैं, वहां तो यही नियम है, सैटरडे को खरीदारी करते हैं, संडे को पका के अलमारी माने फ्रिज भर देते हैं और मंडे टू फ्राइडे खाते रहते हैं। निकाला माइक्रोवेव में गर्म किया, खाया, फिर चल पड़े। या तो फिर वही खाओ, नहीं तो फिर वो उनको तो फुर्सत ही नहीं पका के हमको रोज खिला में। फिर ताजा खानी हो तो फिर अपने पकाना पड़े। तो हमने कहा तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हमको किचन दिखा दो, मिर्ची मसाला कहां है वो दिखा दो, फ्रिज कहां है वो सब दिखा दो, हम अपना पकाएंगे खाएंगे। दिन भर हमको क्या करना, वहां अमेरिका की तरफ फिर प्रवचन खाली 2 दिन होता है, सैटरडे संडे, बाकी 5 दिन कर्रांटे लेकर सो जाओ, अब कोई काम नहीं है। तो फिर क्या करे, तो दिन में अपना पकाते हैं, खूब बढ़िया पका लेते हैं अपनी बुद्धि से, हम मास्टर है वो पकाने में। तो कुछ ज्यादा ही पका देते हैं, हम भी समझते हैं कि जब तक हमें पकाना तो है ही है, थोड़ा ज्यादा पका दो, वो लोग आएंगे तो वो भी ये खा लेंगे, तो कुछ ज्यादा ही पका देते हैं, तो हम खाते हैं फिर रख देते हैं, शाम को जब वो आते हैं खाते हैं तो वाह स्वामी जी, न लहसुन डाला न प्याज डाला, क्या स्वादिष्ट, वाह। ऐसा ही भोजन रोज हमको मिल जाए तो हम सब छोड़ देंगे, लहसुन प्याज मांस मटन सब छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा हमको बनाना आता नहीं, कैसे बनता है। हमने कहा तुम हमारा चेला बन जाओ तो हम पका सिखा देंगे। और क्या स्वादु अन्नम न तो याचेताम विधिवशात प्राप्ते न संतुष्यताम, देख लो। तब वो भोजन की याचना कर रहे थे महात्मा, तब तक वो घर का मालिक गेट से निकला, बोले क्या बात है। चौकीदारों ने कहा साहब देखो ना ये दो साधु घंटों यहां झकझक कर रहे हैं, इनको जाओ कहा नहीं मानते, हमको खाना चाहिए भोजन चाहिए बोल रहे हैं, जा नहीं रहे। तो उसने आओ देखा ना ताव देखा, धक्का देकर निकालो। बेचारा मालिक की आज्ञा थी, चौकीदारों ने धक्का दिया और निकाल दिया। तब कहते हैं कि वो गुरु जो था उसने, भगवान करे इसकी संपत्ति और दुगने हो जाए, आशीर्वाद दिया और चले और आगे गए। बेचारा एक गांव में गरीब बैठा था, झोपड़ी, एक झोपड़ी में बैठा था, तो वहां जाके नारायण हरि कर ली। उसके यहां कुछ नहीं था खाने पीने का, वो बड़ा श्रद्धालु था। ओहो महात्मा आप लोग आ गए, बैठिए बैठिए। तुरंत पानी लाया, पानी दिया और हाथ पांव धोया। महाराज आप बैठिए, मेरे पास अभी घर में तो कुछ है ही नहीं, एक बूढ़ी गाय पाल रखा है, मैं अभी गाय दूह कर लाता हूं। वो गया गाय को दूह के लेके आ गया, गरम किया, गुड़ डाली और महात्मा को पिलाया। महात्मा प्रसन्न हो गए, वाह क्या सेवा की बेटा, तुम इतनी बड़ी सेवा करते हो, अकेले रहते हो घर में। बोले हां महाराज, पत्नी मर गई, बच्चे कहां है। तो बोले बच्चे अमेरिका गए। तुम अकेले हो। बोले हां अकेले हूं। तो चलो अब हरिद्वार की तरफ, बद्री जाएंगे, केदार जाएंगे, सत्संग करेंगे, कुंभ मेला जाएंगे, चलो तीर्थ यात्रा में। क्या बैठे हो। बोले महाराज एक ही बंधन है, नहीं तो मैं भी आपके पीछे जाता। एक बूढ़ी गाय पाल रखा है जिसका दूध आपने पिया है, है? अब मैं उसको छोड़ के चले जाऊं, उसको घास पानी कौन करेगा, मैं छोड़ नहीं सकता हूं महाराज। महात्मा उधर चले गए और महात्मा ने कह दिया कि उसकी गाय जल्दी मर जाए। शिष्य को समझ में नहीं आया है, तुम लोगों को भी समझ में नहीं आया होगा ना, महात्मा पागल है, है? शिष्य को समझ में नहीं आया तो शिष्य ने पूछा महाराज गुरुदेव ये क्या आपका है। वो इतना वैभव संपत्ति जिसने दुत्कारा एक गिलास पानी तक पीने नहीं दिया, उसको तो आपने कहा कि इसके संपत्ति और दुगनी हो जाए, चौगुनी हो जाए, और बेचारा इतनी श्रद्धा से उसने गाय का दूध निकाला पिलाया, है? और उसको कहते हैं कि गाय मर जाए जल्दी। एक मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बोले बेटा उसको एक ही गाय बंधन थी और कोई बंधन नहीं था, वो यदि मर जाएगा तो वो तो भजन करेगा, आराम से बद्री केदार तीर्थ यात्रा में जाएगा, खूब सत्संग सुनेगा, खूब भजन करेगा, वो आत्म कल्याण कर लेगा, वही एक बंधन था वो बंधन कट गया तो अच्छा तो है ना, और क्या है? क्या उसको मैं फिर फंसाऊं? वो सेठ की जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति इसको प्राप्त हो जाए, मैं दे सकता हूं आशीर्वाद, लेकिन क्या देकर उसकी जिंदगी बर्बाद कराऊं? बोलो महात्मा का काम क्या है? किसी की जिंदगी बर्बाद करना महात्मा का काम है? और आप लोग क्या मानते हो? संसार के क्षुद्र वस्तुओं को प्राप्त करना ही ईश्वर की कृपा मानते हो? हैं? संसारी लोग तो इसी को ईश्वर की कृपा मानते हैं ना। महाराज ईश्वर की बड़ी कृपा है, गाड़ी है, दुकान है, मकान है, पैसा है, घर है, यूं है त्यों है। अरे भाई ये ईश्वर की कृपा मानोगे और इसी में संतुष्ट रहोगे फिर मोक्ष कब मिलेगा तुमको? ईश्वर की कृपा तो यह है कि तुम्हारी वृत्ति भगवान के तरफ कितनी अभिमुख हुई। तब उस शिष्य को समझ में आया कि हाँ महाराज आपने जो कहा ठीक है, वो तो विषय में चिंतन में लगा है इसलिए विषय में फंसा दो। वह यदि संपत्ति सब निकल जाएगा उसका सेठ का, फिर भी भजन करने वाला नहीं, बैठ के रोते ही रहेगा, समझे कि नहीं? हाय मेरा था वो चला गया, हाय मेरा यो था वो चला गया। इसीलिए हमने उसको कहा कि उसकी संपत्ति दुगनी हो जाए, और क्योंकि ये तो बंधन कट गया तो भजन खूब करेगा, खूब भगवान की भक्ति करेगा, सत्संग करेगा। तब शिष्य को समझ में आया ईश्वर की कृपा। नारद जी ने भागवत में कहा कि नहीं, जब उसकी मां मरी तो क्या बोला नारद जी ने? अनुग्रहम मन्यमाना प्रातिष्ठत दिशमुत्तरम। वो इसकी मां ही बंधन थी, क्योंकि रोज मां उसको लेके जाती थी कहां? महात्मा लोग जहां सत्संग करते थे, और उस नारद जी को तो महात्माओं के बीच में छोड़ देती थी और अपने आश्रम की काम सेवा करती थी, और शाम को हुआ तो फिर उसका हाथ पकड़ा। बच्चा महात्माओं से अलग होना नहीं चाहता था। नारद जी बोलते मुझे तो संतों के सान्निध्य में रहना बड़ा आनंद आता था, वो लोग दिन भर सत्संग करते थे, मैं दिन भर उनके सत्संग सुनता था, मैं चाहता था कि शाम को भी उनके सान्निध्य में ही रहूं, लेकिन जैसे शाम हुआ वो अपने घर जाने लगती थी तो हाथ पकड़ के खींच लेती थी, मैं नहीं चाहता था, जबरदस्ती लेके चले जाती थी, वही मेरा बंधन था। और जब सुबह हुआ तो मैं चाहता था कब जल्दी चले, कब चले, कब चले संतों के यहां, तो लेके आती थी, फिर मैं महात्माओं के बीच में सत्संग सुनता था और मां काम करती थी, शाम को फिर पकड़ के ले जाए। मेरे लिए वही मुसीबत था, बंधन था, और तो कुछ था नहीं। एक दिन बस प्रातःकाल जल्दी उठकर आए आ रहे थे तो सर्प ने उसको काट लिया और मां मर गई। पहले तो मैं भी जीव होने के कारण थोड़ा मुझे भी दुख हुआ, मैं रोने लगा, लेकिन गांव वाले आए तो तेरी मां अब कभी नहीं उठेगी, मर गई है वो सर्प के कारण, काटने के कारण मर गई है, अब तो तुम्हें जो करना है कर्तव्य करो। बोले क्या करना है? बोले बेटे होने के नाते अब अग्नि संस्कार तुमको करना पड़ेगा। तो गांव वालों ने कहा कि जो झोपड़ी थी उसी झोपड़ी के लकड़ी रुकड़ी तोड़ लिया और उसी में मां का शरीर डाक दिया और आग लगा दिया है। फिर क्या तुमने क्या किया महाराज? बोले अनुग्रहम मन्यमाना प्रातिष्ठ दिशमुत्तरम। भगवान को बड़ा धन्यवाद किया मैंने कि हे परमात्मा तुम्हारी बड़ी कृपा हो गई, मर गई मां। अब तो क्या किया? प्रातिष्ठ दिशमुत्तरम, उत्तराखंड के तरफ लग गया मैं, क्योंकि महात्माओं ने उत्तराखंड की बड़ी महिमा गाई थी। हाँ, वहां गंगा जी है, सप्तऋषि धारा है, और वहां हिमाल है, केदार है, बद्रीनाथ है, जहां नित्य निरंतर भगवान तपस्या करते हैं। वो संस्कार था तो मैं उत्तराखंड के तरफ लग गया भाई। अनुग्रह मन्यमाना, एक सज्जन आके हमसे कहा कि महाराज कृपा करो। तो हमने उससे पूछा कि कैसी कृपा करे, तुम्हें कैसी कृपा चाहिए? नारद की तरह जैसी कृपा चाहिए कि उस सेठ की जैसी कृपा चाहिए, बोलो। तो उसने सोचा, उसने उसको तो समझ में आया नहीं, बोले महाराज हम नहीं समझ रहे हैं कि नारद के प्रति होने वाली कृपा और सेठ के प्रति होने वाली कृपा क्या है महाराज। बोले सेठ को जो कृपा किया महात्मा ने, तुम्हारी संपत्ति और 10 गुना हो जाए। ऐसे कृपा करे कि नारद जी ने जो कहा अनुग्रह मन्यमानम प्रातिष्ठ दिशमुत्तरम, एक ही मां बची थी, घर था, घर भी किस काम में आया, मां को जलाने में काम आ गया, खत्म, अब क्या बंधन रहा। तो ऐसी कृपा करे कि वैसी कृपा करे, बोलो। तो समझ में नहीं आया, तो वो तो कहने लगा सेठ की तरह कृपा करो। ले जी 99% जो है ना वही कृपा, उसी को कृपा मानते हैं। तो यहां शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, कैसी कृपा मांग रहे होंगे बोलो।
प्रभोस्तम दीनानां खलु परम बंधु पशुपते प्रमुखो हम तेषां अपि किमुत बंधुत्व मनयो।
नहीं तो आपके और हमारे बीच में जो बंधुत्व है, मित्रता है, यही तो मित्रता है कि मैं बहुत दीन हूं, आप दीनानाथ हैं, आप दीनानाथ हैं, दीन बंधु हैं, दुखियों के मित्र हैं आप।
तो यही वाक्षंतव्य शिवम मद अपराधश्च सकल सकलः।
हे शिवा त्वयैव क्षन्तव्यः, आपके द्वारा ही क्षमा करने योग्य है। कि क्या चीज, बोले मद अपराधाश्च सकला, हजारों अपराध में गिनकर नहीं पूरा कर पाता हूं, इतनी अपराध हैं, जब से पैदा हुआ हूं तब से लेकर आज तक इतने अपराध किए महाराज, इसका प्रायश्चित करके मैं कभी भी पार नहीं पाऊंगा। कितनी कितनी अपराधों का प्रायश्चित करता रहूंगा बोलो, इतनी अपराध है। सुबह उठते ही पहले तो आपके ऊपर ही चढ़ना पड़ता है बोलो, क्योंकि पृथ्वी शिवलिंग है, पृथ्वी क्या है, शिव रूप है। तुमार कस्तम सोमस तुमसि पवनस्तम हुतवः तुमापस्तम व्योम तुम उद्धरणी। ले जी सबसे पहला तो शिवलिंग यही है, हाँ पृथ्वी, सुबह उठते ही उसी में पांव धारण करना पड़ता है, उसके बाद खाली पांव नहीं, फिर जाकर मल त्यागना पड़ता है, मूत्र त्यागना पड़ता है, मुख से जब भी कफ आए तो वहीं थूकना पड़ता है। आपको न जाने कितने बार दिन में हजारों बार थूक रहा हूं, आपके स्वरूप में ही तो थूक रहा हूं, और कहां थूकूंगा। सर्वव्यापक आम है, आप सर्वव्यापक हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां आप नहीं है, और मुझे थूकना है, अब कहां थूकू बोलो, कहां थूकू मैं, थूकने के कोई जगह भी तो होना चाहिए, ऐसी जगह कहीं भी नहीं है जहां आप न हो वहां थूकू, लेकिन जहां हो वहां पर ही हुई है। देखो आप, जब भगवान राम ने जनकपुर में जाकर शिव का दिया हुआ धनुष को तोड़ा, परशुराम के गुरुजी का धनुष, शिव धनुष तोड़ा राम ने, तब जब परशुराम को पता चला तो वो तो आग बबुल हो गए। कहानी सुनाए ना रामायण के, बड़े गुस्से में आ गए परशुराम जी, और परशुराम से तो सब क्षत्रिय ऐसे ही डरते थे, त्राई त्राई, 21 बार क्षत्रिय कुल का संहार किया, हाथ में फरसा लेकर आ गए परशुराम जी, तो सब कांपने लग गए। अब जनक जी डर गए, सबसे ज्यादा तो जनक जी को डर हुआ, अब क्या करेंगे पता नहीं है? क्योंकि उनके द्वारा रखी हुई धरोहर के रूप में रखी हुई शिव धनुष है, बेचारा उसने तोड़ दिया, अब क्या करें। तब सब लोगों ने परशुराम को समझाने की कोशिश की, लेकिन परशुराम का गुस्सा वो ऐसा है कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर के जैसे है, उतरता ही नहीं कितनी गोली खाओ। जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो ना, जितनी गोली खाओ उतरता ही नहीं है,
चढ़ा है ऊपर, तब ललकारा, भगवान राम आए, हाथ जोड़ा, प्रार्थना की, भाई हम क्या करें महाराज, हम तो छोटे बच्चे हैं। अब जनक ने कहा कि कोई इसको उठाए तोड़े, तो हमने इसे छोया तो छोते ही टूट गया, अब क्या करें, नया होता तो भी शायद न टूटता, ये तो बहुत पुराना है, पुराना था हमने छोया तो टूट गया, अब मैं क्या करूं भाई इसके लिए, अब क्या करें, क्षमा दो, भले हम क्षमा क्षमा नहीं जानते। बस लड़ाई शुरू होने लग गई, तो बोले अब क्या करते, क्षमा नहीं करते तो चलो लड़ाई करते हैं, क्योंकि परशुराम जब गुस्से में आ गए, राम को तो गुस्सा नहीं आया, लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, वो कम नहीं थे लक्ष्मण, क्योंकि शेष अवतार लक्ष्मण, वो तो सर्प को जब छेड़ते हो तो फौन ऐसा करता है ना, चलो लड़ाई करते हैं। बोले लड़ाई समानता में होती है, विषम में लड़ाई नहीं होती है, तेरे पास हथियार नहीं, हमारे पास हथियार है, हम नहीं लड़ेंगे। तो परशुराम ने कहा कि तेरे से मैं तब लड़ूंगा जब तू भी हथियार उठाएगा। राम ने कहा कि मेरे पास तो है नहीं, दे दो। परशुराम ने कहा कि ले, ये तू ले ले, मैं दूसरे हथियार से लड़ता हूं। ऐसा किया तो वो धनुष बाण राम के हाथ में ऐसा चला गया, क्योंकि परशुराम का जो धनुष बाण था विष्णु का धनुष बाण था, परशुराम भी तो विष्णु का अवतार है, तो राम का, क्योंकि वो राम ही का तो था वो हथियार, वो माने धनुष बाण राम के हाथ में, तो ऐसे साथ में गया, उन्होंने ऐसा पकड़ लिया, उठा लिया, देख लो। और प्रत्यंच जो चढ़ाए राम ने ऐसे साथ में, जब तीर लगा के ताना खींचा और कहा कि परशुराम बोल, अब ये तीर मैं कहां छोड़ू, कहां छोड़ू बोल, एक ही शर्त है, ये तीर मैंने चढ़ा लिया, अब ये अमोग नहीं होगा, ये अमोग है, ये वापस नहीं जाएगा अपना काम किए बिना। तेरे सामने मैं दो विकल्प रखता हूं, दो विकल्पों में से एक विकल्प चुन, मैं किसको नष्ट करूं। तूने अभी तक जो तपस्या करके पुण्य अर्जित किया है, वो सारे पुण्य को खत्म कर दूं इस तीर से, कि तेरे दोनों पांवों को खत्म कर दूं, बोल। ये दो विकल्प है, रामायण में साफ लिखा है। राम ने कहा, तब परशुराम पहचान गए कि ये साक्षात नारायण है, नहीं तो ये मेरा धनुष उसके हाथ में जा ही नहीं सकता था, ये तो नारायण अवतार है। तो क्षमा मांगने लगे तो राम ने कह दिया कि अब तो क्षमा क्षमा कोई नहीं, इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने चढ़ा दिया। दो ही लक्ष्य हो सकते हैं, एक आज तक तुमने अर्जित किया हुआ पुण्य उसको नष्ट कर दूं, कि तेरे दोनों पंग काट दूं। तो परशुराम ने कहा, महाराज आप सारी मेरे पुण्य को नष्ट कर दीजिए, पांव सुरक्षित रख दीजिए, क्योंकि पांव सुरक्षित रहेगा तो मैं कहीं जा सकता हूं, घूम सकता हूं, फिर तपस्या कर सकता हूं। तो भगवान राम ने परशुराम के सारे पुण्य को नष्ट कर दिया, रामायण का प्रसंग है। तो अब कहां रहें भाई, कहां थूकें, कहां मूतें, कहां हगें, कहां चले, पल पल में अपराध हो रही है, और इन एक एक अपराध का एक एक प्रायश्चित करने लग जाऊं, एक दिन की जो अपराध है वही हजार जन्म तक भी प्रायश्चित से मुक्त नहीं हो पाएगा, तो सौ वर्ष तक के जो अपराध हुए हैं उसको कैसे प्रायश्चित होगा, मेरे से नहीं होगा महाराज। तो एक ही उपाय है, क्षंतव्य, आप यदि चाहे तो सब क्षमा कर सकते हैं, तो मैं इन सारे अपराधों से मुक्त हो सकता हूं, अन्यथा इन अपराध से मैं मुक्त नहीं होगा, परिणाम क्या होगा, ये अपराध के चलते मुझे फिर पैदा होना पड़ेगा, मैं पैदा होना नहीं चाहता हूं, इसलिए कृपा करो और मेरे क्षमा कर दो। प्रभुस्तम दीनानां खलु परम बंधु पशुपते प्रमुख्योऽहं तेषां अपि किमुत बंधुत्व
मनयोः त्वयैव चिन्तव्या शिवमदपराधाश्च सकलः प्रयत्नात् कर्तव्यम् मदवनमिमम् मियम् बन्धुसरणि। यही मित्र की मित्रता है। बंधु सरणी, सरणी माने मित्रता का नियमावली, रूल है, ये नियम है। यही है कि अपना मित्र यदि कोई गलत करता है उसको दंड देने की अपेक्षा क्षमा करो, नहीं तो मित्र होकर दंड देने लग जाओ तो मित्र की क्या मित्रता। मित्र की मित्रता तो दंड देना नहीं, मित्र की मित्रता है क्षमा करना। देखो बच्चा जब से पैदा होता है इतनी अन्याय करता है अपनी मां के प्रति, इतनी अन्याय करता है। वेद ने कहा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। वेद ने क्या कहा? मातृदेवो भव। मां साक्षात परमात्मा का रूप है, लेकिन मां, बच्चा मां के गोद में मूत देता है। परमात्मा को मूतना चाहिए है? बोलो, मूत देना चाहिए। मां यदि परमात्मा रूप है तो उसके गोद में मूत पिशाब करना चाहिए। अब इस अपराध के क्या करोगे, क्या प्रायश्चित होगा उस बच्चे की तरह? संभव होगा बच्चा प्रायश्चित कर पाएगा? कितनी बार? वो भी एक बार नहीं, कितनी बार बोलो। अरे पेशाब करने की छोड़ दो, कितने लात मारता है? नहीं मारता है लात? बोलो, वहीं पेशाब कर देता है, वहीं टॉयलेट कर देता है, उसी के गोद में काट देता है, दूध पीते पीते उसका स्तन काट देते हैं बच्चे, रात को सोने नहीं देते। अब उस बच्चे से कहो कि तूने मां के प्रति जो अन्याय किया है, अपमान किया है, अपराध किया है, उन सब का प्रायश्चित कर। तो कोई कर पाएगा? बोलो, एक जन्म नहीं हजार जन्म में भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब भी जन्म लेगा तो फिर मां के द्वारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर वो अपराध करेगा। तो उन सारे अपराधों से उन्मुक्ति प्रायश्चित से तो संभव नहीं है। तब फिर कैसे संभव होगा? मां उस बच्चे के सारे अपराध को क्षमा कर देती है, बस। उसके अलावा कोई उपाय बोलो है? हमने एक बार मैगजीन पढ़ी थी, बहुत पहले की बात है, पेपर में आया था, अमेरिका में एक मां ने अपने बच्चे के प्रति पालन पोषण न करने के कारण कोर्ट में क्लेम कर दी, मेरे बच्चे ने इस बुढ़ौती में मेरा बच्चा, मेरा बेटा परवरिश नहीं कर रहा है, देखभाल नहीं कर रहा है, मुझे घर से निकाल दिया, न मेरे लिए रहने का घर है, न मेरे लिए खाने के लिए कोई है, न औषधि दवा कुछ नहीं, मुझे घर से निकाल दिया, मुझे न्याय चाहिए। तो कोर्ट में सुनवाई हुई, उसको बुलाया गया, तूने ऐसा काम क्यों किया, वो तो तेरी मां है, 10 महीने गर्भ में धारण किया, 10 वर्ष तक तेरे मलमूत्रों को उसने साफ की, 25 वर्ष तक तेरे को रोटी पकाकर खिलाई है, तेरे कपड़े धोई, और तूने उसको निकाल के फेंक दिया। बोले ठीक है, उसने वो सब किया होगा तो किया होगा, कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं ये सब करने के एवज में कितना पैसा होता है टोटल करके मुझे बताएं, मैं सब पेमेंट करने को तैयार हूं। उसने कोर्ट को कहा, 10 महीने उसने पेट में लिया तो उसका कितना भाड़ा होगा टोटल करो, 25 वर्ष उसने भोजन बना के खिलाया कितना भाड़ा होगा टोटल करो मुझे, उसने मेरे कपड़े धोए 25 वर्ष तक, तो उसका मैं सबका बिल चुकाने को तैयार हूं, कितना हुआ है मुझे टोटल करके दे, उस बूढ़ी को मैं अब नहीं पालूंगा।
बोलो क्या पेमेंट कर पाएगा वो है? कर पाएगा वो पेमेंट? क्या मूर्खता है। हमने सोचा, सुना, जब ये पढ़ा पेपर में, हमने कहा क्या मूर्खता की बात करते हैं, देख लो। इसी तरह कोई कहे कि इस इंसान की शिव ने हमको क्या दिया है, अरे श्वास बनकर अंदर और बाहर करके तुम्हें जीवन दिया है, और कोई मूर्ख कहे कि उसका कितना होता है, हम पेमेंट करने को तैयार हैं, हैं? कितनी सिलेंडर गैस हमने लिया शिव से, बोलो, हम पेमेंट करने को तैयार है। अरे मूर्ख, सिलेंडर के गैस से है? तू जिएगा है? क्या बात करते हो तुम। प्रार्थना के अलावा और कोई उपाय नहीं, और तुम्हारी प्रार्थना से भगवान क्षमा करने के अलावा कोई उपाय नहीं है, देख लो। इसलिए शंकराचार्य जी भगवान शिव के सामने यही कहते हैं, हमने विचार किया है, आप हमारे आपके प्रति प्रार्थना के अलावा और दूसरा विकल्प नहीं, और क्षमा के अलावा हम उऋण होने का और कोई विकल्प नहीं, इसलिए हे भगवान क्षन्तव्य। प्रभुस्तम दीनानां खलु परम बंधु पशुपते प्रमुखोऽहं तेषां अपि किमुत बंधुत्वमनयो त्वयैव क्षन्तव्यः शिवमदपराधाश्च सकला प्रयत्नात् कर्तव्यं मद अवनम मेरी रक्षा प्रयत्नात् कर्तव्य। बेटा लात मारता है फिर भी मां उसकी रक्षा करती है, करती है कि नहीं? बेटा उसके कोख में, उसके गोद में मलमूत्र कर देता है फिर भी मां उसकी रक्षा करती है। यदि कहीं सुलाया हुआ हो और कोई सर्प उसके आसपास घूमे, मां थोड़ी ये कहती है कि मेरे उसने लात मारी है, हैं? मेरे गोद में उसने मुद दिया है, थूक दिया है, टॉयलेट कर दिया है, मरता है खाता है, सर्प टोकता है काटता है तो काटे, मरता है तो मर जाए, बोलेगी वो मां? शंकराचार्य जी देवी क्षमापन स्तोत्र में लिखते हैं, कुपुत्रो जायता कोची दपी कुमाता नभवती। पुत्र के हृदय में कभी कभी कुत्सित वासना और दुराग्रह हो सकता है, लेकिन मां कभी भी अपने बच्चों के प्रति दुर्भावना की कल्पना नहीं कर सकती है। इसलिए कुमाता नहीं हो सकते, कुपुत्र होते, मां कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए हे मित्र, हे बंधु, मद अवनम इयम बंधु सरणी, यही मित्र की मित्रता है, उसको ठीक से निर्वाह आप ही कर सकते हैं, क्योंकि मेरे में तो क्षमता है ही नहीं, आप में क्षमता है, आप सब कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। उपेक्षा नो चेत किन नरसि भगवन भगवत ध्यान विमुखाम दुराशा भूष्ठाम विधि लिपि मसक्तो यदि भवान शिरस्तद्वै धात्रम न खलु सुवृतम पशुपते कथम वा निर्यत्नम करनख मुखे नैव ललितम। भगवान शिव ये कहे कि बेटा तुम्हारा प्रारब्ध ही ऐसा है, तो प्रारब्ध को किसी की क्षमा करने से हटने वाला नहीं है, प्रारब्ध किसी की क्षमा करने से टलने वाला नहीं है, प्रारब्ध तो तुमने जो किया है वो तुमको भोगना ही पड़ेगा, किसी की माफ कर देने मात्र से प्रारब्ध अन्यथा नहीं होगा। तुम्हारा तीव्र प्रारब्ध तुम्हारे पास आवे भोगने के लिए, तो उसका भगवान भी माफ नहीं कर सकते, हम क्या माफ करेंगे उस प्रारब्ध को। क्या अन्यथा करेंगे। उपेक्षा नो चेत किम, महाराज ऐसी बात नहीं है, ये तो मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि आप मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। ये आप मेरी उपेक्षा नहीं है तो और क्या है, आप प्रभु हैं, समर्थ हैं, इसके बावजूद भी मुझे बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार जरा मृत्यु व्याधि में ग्रसित होना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आपने मेरी उपेक्षा कर दी है। हाँ, ये उपेक्षा नहीं है तो और क्या है। नह रसी भवत ध्यान विमुखाम, शायद मैं आपके ध्यान से विमुख हुआ हुआ हूं। ठीक है, ध्यान से मैं विमुख हुआ हुआ हूं, फिर भी तो आप मेरी उपेक्षा नहीं कर सकते। मैं ध्यान से विमुख हुआ हूं लेकिन आप मेरी उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं। अज्ञानी होने के कारण मैं ध्यान से विमुख हो सकता हूं, अपने कर्तव्य से च्युत हो सकता हूं, लेकिन आप तो समर्थ हैं, आप अज्ञानी नहीं है, आप समर्थ हैं, असमर्थ नहीं है, तो फिर भी इसका मतलब है कि आपने मेरी उपेक्षा कर दी है। आप उपेक्षा मत करो महाराज। उपेक्षा करने का एक ही कारण हो सकता है महाराज, एक तो मैं ध्यान विमुख हूं, आपके ध्यान से विमुख हुआ हुआ हूं, और ध्यान से विमुख तभी हुआ हुआ हूं क्योंकि दुराशा भूयिष्ठां। संसार में एक तो होता है आशा, दूसरा होता है दुराशा। जिस वस्तु की प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो और प्राप्त न हो उसको आशा बोलते हैं, और प्राप्त होने पर जो तुम्हारा हित करे वह दुराशा नहीं। तुम जिस वस्तु को चाह रहे हो वो प्राप्त होते ही तुम्हारा अहित शुरू कर देगा तो वो क्या होगा, वो दुराशा है। और क्योंकि मुमुक्षुओं के लिए संसार की आशा क्या है, क्योंकि ये तुम्हारा हित करने वाला तो है ही नहीं भाई किसी हालत में, फिर भी ये तुम इसकी आशा करते हो, चाहना करते हो, तो ये दुराशा। भूयिष्ठां, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं है, निस्सीम असीम दुराशा कर रहे हो। दुराशा भूयिष्ठां विधि लिपि, आप यदि कहो विधि लिपि, ब्रह्मा जी ने तेरे ललाट में ऐसा ही लिखा है, तो मैं क्या करूं। विधि माने ब्रह्मा, विधि लिपि माने ब्रह्मा की हैंडराइटिंग, कहां लिखेगा, ललाटे, तेरे ललाट में ऐसा ही लिखा है ब्रह्मा ने, मैं क्या करूं भाई। तो जो लिखा है वही भोगना पड़ेगा। महात्मा लोग कहते हैं ना, हमको वही मिलता है जो लिखा है, जो दिखा है वो मिलना जरूरी नहीं है। और हम क्या चाहते हैं, जो दिखा है वो मिले, और होता क्या है, जो लिखा है वो मिलता है, दिखा हुआ मिलता नहीं। बोलो, दिख तो धीरूभाई अंबानी का घर भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं है, हम लोगों को नहीं दिख रहा है धीरू भाई अंबानी का घर, दिख तो रहा है, मिलता है, दिखा है तो क्या करे, दिख तो रहा है तो क्या कर लोगे अब, लेकिन लिखा हो तब ना, उसको लिखा था मिल गया है, जिसको लिखा है उसको मिलेगा, इसीलिए लिखा हुआ मिलता है, दिखा हुआ नहीं मिलता है। इसीलिए देखने की कोशिश मत करो है? कहां क्या है क्या नहीं है देखने की कोशिश मत करो भाई, कोशिश ये करो कि तुम ऐसा कर्म करो कि ब्रह्मा तुमको लेखने में बाध्य हो, बस ऐसा कर्म करो कि विधाता लेखने में बाध्य हो, तब तो तुम्हें मिल जाएगा, वो लिख देगा तो मिल जाएगा, और लिखेगा वो तब जब तुम कुछ करोगे, तुम्हारे किए बिना वो लिख नहीं सकता है। तो वहां कहा शंकराचार्य जी ने, दुरासा भूयिष्ठम विधि लिपि अशक्तो। यदि आप ये कहो ब्रह्मा ने यानी विधाता ने तुम्हारे ललाट में जो लिखा है उसको मैं हटा नहीं सकता हूं, प्रारब्ध को मैं हटा नहीं सकता हूं, यदि आप कहते हो तो झूठ बोलते हो। बोले क्या, शिर तद्वै धात्रम, यदि जिस विधि ने हमारी प्रारब्ध को हमारे ललाट में जो लिख दिया है उसको आप नहीं मिटा सकते हो कहते हो, फिर उसी विधि लिखने वाले ब्रह्मा के उसकी सिर को आपने नख से क्यों निकाल दिया? बोलो, भगवान शिव ने क्या किया? ब्रह्मा जी के जो पांच मुख थे पहले, एक मुख भगवान शिव ने अपने नख से, हाथ के नख से निकाल दिया, नूच के निकाला। जैसे आप फूल तोड़ते हो ना, ऐसे तोड़ते हो, उसके टहनी में पकड़ते हो और नख से ऐसा करके तोड़ देते हो, तो उस फूल के लिए तुम क्या हो गए? रुद्र ही हो। जैसे ब्रह्मा जी के लिए सिर के लिए भगवान शिव, उन्होंने भी ऐसे ही तोड़ दिया, इसलिए उसका चार ही सिर रह गया, पांचवां तो खत्म। क्यों? उसने अमर्यादित व्यवहार किया। स्वाम दुहितरम, शिव महिमनी स्तोत्र में स्वाम दुहितरम, जब उन्होंने सृष्टि की और ऋषियों को उत्पन्न किया, वैदिक कर्मों को तैयार किया, तब प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए समय चाहिए, किस समय कितना काम करें, किस समय कौन सा काम करें, किस समय न करें, प्रवृत्ति निवृत्ति। ऋषियों के प्रवृत्ति हुई नहीं, बैठे हैं, तो प्रवृत्ति के लिए सर्वम कामस्य चेष्टितम, तो मन में कामना होनी चाहिए। तब संध्या को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, कहीं सरस्वती कह देते हैं, कहीं संध्या, मेन कुरा मुख्य बात जो है संध्या है, संध्या को उत्पन्न किया, ताकि संध्या के चलते ऋषियों को यह पता चले कि इस समय यह काम करना है, इससे पहले यह करना है, इसके बाद यह करना है, तो संध्या को उत्पन्न किया, फिर भी ऋषियों की प्रवृत्ति नहीं हुई, तो क्या करें? तो प्रवृत्ति करने के लिए ब्रह्मा जी ने काम को उत्पन्न कर दी, और जैसे काम को उत्पन्न किया तो सारे ऋषियों में प्रवृत्ति हो गई, तो अपने अपने काम करने लग गए सब। लेकिन इधर संध्या इतनी सुंदर थी और उधर काम को पैदा किया, तो काम ने ऐसा असर किया कि अपनी ही पुत्री स्वाम दुहितरम, अपनी ही पुत्री के प्रति वह आकर्षित हो गए, आसक्त हो गए। री रीसम, रमण करने की इच्छा से भाग गए, तो कहते हैं कि वह संध्या या सरस्वती भागी, ये तो अनर्थ हो जाएगा, तो वो पीछे पीछे फिर भागे, तो संध्या सरस्वती मृग हुई, वो भी मृग हो गए, तब फिर वो एक नक्षत्र हो गई, तो वो भी नक्षत्र हो गए, फिर भी भोगासक्ति नहीं गई ब्रह्मा की। भगवान शिव को जब पता चला तो हाथ में एक धनुष बाण लेकर पीछे दौड़े, तो अभी भी कहते हैं तो अंतरिक्ष में जो तीन तारे होते हैं ना, वो तीन लाइन से हैं, वह मृगशिरा नक्षत्र, हाँ, मृगशिर से नक्षत्र, वो अभी भी पहले सरस्वती, बीच में ब्रह्मा, उसके पीछे भगवान शिव तीर लेकर खड़े, खबरदार आगे बढ़ा। तो उस काम आसक्त होकर अमर्यादित व्यवहार करने का परिणाम यह हुआ कि भगवान शिव ने एक पकड़ लिया और उसमें से ऊपर का सिर नख से एकदम चूर्ण तोड़ दिया, फेंक दिया। किसका? सारे दुनिया का विधि ललाट में लिखने वाले का ललाट ही आपने उखाड़ के फेंक दिया। इसका मतलब हमारी विधि को बदल नहीं सकते हैं, ये बात नहीं। विधि लिखने वाले के ललाट बदल दिया आपने। इतना ही मैं जानता हूं कि आपकी उपेक्षा है, आपकी कृपा दृष्टि हम पर नहीं हुई है, इसी का परिणाम हम आज तक भोग रहे हैं। उपेक्षा मत करिए भगवान शिव। क्षंतव्य कथम वा निर्यत्नम कर नख मुखे नैव लुलितम। आप ही ने तो उसके सिर को नख से निकाला है, तो सिरे को निकालने वाले को क्या वो विधि लेके, वो क्या उसका लिखा हुआ प्रारब्ध आपके सामने क्या करेगा? आप चाहें तो लिखने वाले का ही नाश कर सकते हैं। तो विधि क्या होता है आपके सामने? तो हे शिव, इस प्रकार के उपेक्षा मत करिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।